हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 39। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय, चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंशे विभूषितकरा नवनीरधाभा, पीताम्भरधारुण बिम्बफलधरोष्ठा, पुलिन्द्रसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति ये स्तवे, वेदे साङ्गपाठक्रमोपनिषदे गायन्ति यम् सामगा, ध्यानावस्थित तत् गतेन मनसा, पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा, देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। नष्टपायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नष्टिके, पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं, भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। पहला सिक्कम तीसरा अध्याय श्लोक नंबर 39। कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सूत गोस्वामी कहते हैं, अधीह धन्य भगवंत इत्थम यद्वासुदेवी किल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभावम् न यत्र भूयः परिवर्त उग्रे। अधीह धन्य भगवन्त इत्थम् यद्वासुदेवी किल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभावम् न यत्र भूयः परिवर्त उग्रे। अधीह धन्य भगवन्त इत्थम् यद्वासुदेवी किल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभावम् न यत्र भूयः परिवर्त उग्रे। अधीह धन्य भगवन्त इत्थम् यद्वासुदेवीखिल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभावम् न यत्र भूयः परिवर्त उग्रे। अधीह धन्य भगवन्त इत्थम् यद्वासुदेवीखिल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभावम् न यत्र भूयः परिवर्त उग्रे। अधीह धन्य भगवन्त इत्थम् यद्वासुदेवीखिल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभावम् न यत्र भूयः परिवर्त उग्रे। शब्दों का अर्थ, अतीह धन्य अथ मन इस प्रकार, यह यानी इस संसार में, धन्य यानी सफल, भगवंत इत्थम भगवंत यानी पूर्णतया भिज्ञ, इत्थम यानी ऐसा, यद वासुदेवे खिल लोकनाथे, यद माना जो वासुदेवे अर्थात भगवान के प्रति, अखिल लोकनाथे अखिल माना संपूर्ण, लोकनाथे यानी समस्त जगतों के स्वामी के प्रति, कुर्वन्ति सर्वात्मकम आत्मभावम, कुर्वन्ति यानी प्रेरित करते हैं, सर्वात्मकम अर्थात शत प्रतिशत, आत्मभावम अर्थात आत्म यानी आत्मा, भावम मतलब आह्लाद, न यत्र भूय परिवर्त उग्रे ना मन कभी नहीं यत्र मतलब जहाँ भू यानी फिर परिवर्त यानी पुनरावृत्ति उग्रे यानी भयानक अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय हो। अनुवाद इस संसार में केवल ऐसी ही जिज्ञासाओं द्वारा मनुष्य सफल तथा पूर्णतः विज्ञ हो सकता है क्योंकि ऐसी जिज्ञासाओं से अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान के प्रति दिव्य आह्लादकारी प्रेम उत्पन्न होता है और जन्म मृत्यु की घोर पुनरावृत्ति से शत प्रतिशत प्रतिरक्षा की गारंटी प्राप्त हो सकती है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि यहाँ पर सुत गोस्वामी द्वारा शौनक आदि मनुष्य मुनियों की जिज्ञासाओं की प्रशंसा उनकी दिव्य प्रकृति के आधार पर की गई है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि भगवत भक्ति ही उनको पर्याप्त विस्तार में जान पाते हैं, अन्य कोई नहीं जान पाता। अतएव भक्तगण समस्त आध्यात्मिक ज्ञान से पूर्णतया भिज्ञ होते हैं। भगवान ही परम सत्य है, निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा भगवान के ज्ञान में सम्मिलित है। अतः जो भगवान को जान लेता है वह उनके विषय में उनकी नाना शक्तियों तथा उनके अंशों के विषय में सब कुछ जान लेता है। अतएव भक्तों को परम भाग्यशाली अर्थात सफल कहा गया है। भगवान का शत प्रतिशत भक्त जन्म मरण के चक्कर के भयानक भौतिक तापों के प्रति निश्चेष्ट रहता है। ओम अज्ञान तिमिरस्य ज्ञानंजनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं कुरुतु वाचालं पंगुं लंघयति कीरं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारणं। अत्यंत ही सुंदर श्लोक आज सुत गोस्वामी बता रहे हैं। इसका रिलेशन जो है पिछले श्लोकों से है क्योंकि श्लोक नंबर 37 में सुत गोस्वामी ने बताया था न चास्य कस्य निपुणेन धातु अवैति जन्तु कुमनीश ऊति नामानि रूपाणि मनोवचो भी संतन्वतो नटचर्यामि वाक्य। कि भगवान को न चास्य कस्य, भगवान को कोई जान ही नहीं सकता है, उनको जानने के लिए कोई निपुण नहीं है। और भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान का जो लीलाएं हैं वो सब ऐसा है जो अनभिज्ञ होते हैं, जो अल्पज्ञानी होते हैं, जो मूर्ख होते हैं उनको ऐसा लग रहा है जादूगरी, कोई चमत्कारी पुरुष लगता है। भगवान समझकर उनकी शरण में आना बहुत ही कठिन है, हर किसी को ये बात समझ में ही नहीं आती है। और उस श्लोक के अंदर श्री प्रभुपाद ने ये बात बताई थी कि भौतिकवादी दो टाइप के होते हैं, एक सकामगर्मी होते हैं और दूसरे मीमांसक। यानी कि कुछ तो क्या करते हैं, अगर भगवान की शरण में जाते भी हैं तो भी भगवान को सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ द गॉड हेड या मैं भगवान का दास हूँ ये समझ कर नहीं, बल्कि क्यों जाते हैं, क्योंकि उनको इच्छा होती है सकामगर्मी। और दूसरे क्या करते हैं, वो मीमांसक होते हैं, वो क्या करते हैं, चिंतन करते हैं, अपनी भौतिक इंद्रियों द्वारा भगवान को जानने की इच्छा करते हैं। और उनके फलस्वरूप उनको क्या दिखता है कि भगवान जो है वो कोई शरीर, मतलब भगवान का कोई स्वरूप नहीं हो सकता है, भगवान निराकार हो सकते हैं, भगवान का कोई रूप नहीं हो सकता, क्योंकि जो इतनी बड़ी संसार को इतने सारे सब कुछ चला रहा है वो एक आकार कैसे हो सकता है उसका? तो उनको ऐसा लगता है, वो ऐसा ब्रह्म, वो समझते हैं कि जो कुछ भी दिखता है वो ब्रह्म से आया है और जिसका कोई स्वरूप नहीं है, और ये सूर्य, प्रकाश जो भी है वो सब ब्रह्म से ही आया है, जो कुछ भी संसार में है वो ब्रह्म से ही है। तो अगर कहा जाए कि आप एक एग्जांपल ऐसी दो, उनसे अगर ऐसा पूछा जाए कि एक एग्जांपल ऐसी दीजिए जिससे आप में पता चले कि निराकार से साकार आया हो, यानी कि कोई भी संसार में ऐसी एग्जांपल नहीं है कि निराकार से साकार का उद्भूत हुआ है, लेकिन अगर साकार से निराकार के विषय में बात की जाए तो संसार में कितनी सारी एग्जांपल ऐसी हैं, जैसे सूर्य साकार है और उसका जो प्रकाश है वो निराकार है, उसका अस्तित्व है लेकिन उसका जो ज्योति वास्तव में सूर्य है तभी तो प्रकाश है। जैसे फूल साकार है और अगर फूल है तभी तो सुगंध है, भले सुगंध निराकार है परंतु वास्तव में क्या है, फूल तो साकार है। उसी तरह वास्तव में भगवान साकार है और भगवान का जो तेज है वह निराकार है। तो साकार से ही निराकार आता है, परंतु लोग, श्रील प्रभुपाद जी बताते, भगवान भी कहते हैं न चास्य कश्चन निपुण, वो नहीं जान सकते हैं। और आगे हमने पता, हमें न सूत गोस्वामी ने बताया 38 में, सवे ददातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणि यो मायया संकतयानुवृत्या भजेत तत्पाद सरोजगन, कि जो भगवान के सरोज पाद कमलम, भगवान के जो बहुत ही सुंदर चरण है, चरण कमल की अभाद्य रूप में सेवा करता है, कंटिन्यूस उनकी सेवा करता है, उस चक्रधारी भगवान के चरण कमलों की अनुकूल सेवा करता है, जो भगवान की सेवा के लिए अनुकूल, अनुकूलस्य संकल्पो प्रतिकूलस्य वर्जिता, जो भगवान की सेवा में प्रतिकूल है उनका त्याग करता है, वही इस जगत के सृष्टा की पूर्ण महिमा शक्ति तथा दिव्यता को समझ सकता है। यानी कि भगवान को समझने के लिए हमें बहुत सारी क्वालिफिकेशन चाहिए। वो क्या है कि अपनी इंद्र तृप्ति को छोड़कर भगवान को अपनी इंद्रियों का स्वामी समझकर, उनकी सेवा करके और उनका सतत कीर्तन करके, उनके पवित्र नाम का जप करके, उनकी कथाओं का श्रवण करके यदि खुद को मिटा देंगे और भगवान को ही सर्वस्व समझेंगे, जब तक हमारे अंदर अहम है, जब तक हमारे अंदर विनम्रता नहीं है, जब तक हम भगवान को सर्व संसार सर्व कारण कारण नहीं मानते, तब तक हम भगवान को नहीं समझ सकते। क्योंकि भगवान जब तक हम पर कृपा नहीं करेंगे तब तक हम भगवान को नहीं समझ। तो यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि यदि भगवान को समझना इतना कठिन है तो फिर आवश्यकता क्या है भगवान को समझने की? संसार में करोड़ों चीजें हैं ऐसी जो कि हम समझ सकते हैं। हमें मनुष्य का जो मिला है, स्वतंत्रता मिली है, हम अपनी इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, तो फिर भगवान को समझने के लिए क्या क्यों जरूरी है कि हम भगवान को समझें? उसका उत्तर देते हैं आज के श्लोक में सूत गोस्वामी, अथेह धन्या भगवंत इत्थम। अथेह यानी इह का मतलब होता है इस संसार में, यानी इस संसार में करोड़ों लोग हैं जो कि अपनी इच्छा के अनुसार जिज्ञासा करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। वो कभी कुछ जानने की कोशिश करते हैं, कोई ना संसार के विषय में जानता है, तो कोई सियासत पॉलिटिक्स के विषय में जानता है, कोई किसी के विषय में जानने की कोशिश करता है, कोई तो जानवरों के विषय में जानने की कोशिश करते हैं, कोई हर कोई जब से जीव उत्पन्न हुआ है तब से हर समय कुछ न कुछ जानने की जिज्ञासा करता रहता है कि ना ये कौन है, वो मुझे क्या करना है। जब सुबह होती है तब सारे परिंदे उड़ जाते हैं और फिर जोर जोर से छू छू करते हैं, आवाजें निकालते हैं कि आज हम कहाँ से अपना भोजन प्राप्त करेंगे। हर कोई जीव सुबह सवेरे उठते हैं तो कुछ न कुछ पूछते हैं, आज क्या खाएंगे, आज क्या बनेगा, मेन्यू क्या है, किधर जाना है, डेट क्या है, मतलब हर कोई कोई ना कोई जिज्ञासा करता रहता है। जब से मुंह खोलना बोलना सीखता है ना जीव, तब से कुछ ना कुछ सुनता पूछता रहता है, पूछता रहता है, क्वेश्चंस करता रहता है। किसी से भी मिलेंगे उसके बारे में पूछेंगे, आप कौन है और है ना, कहाँ रहते हैं, ये वो, मतलब क्वेश्चंस पर क्वेश्चन। जीवन टिका हुआ है क्वेश्चंस के ऊपर। यदि क्वेश्चंस नहीं है तो समझो जीवन लाइफ एकदम साइलेंस हो जाए। क्वेश्चन ही क्वेश्चन है लाइफ में। लेकिन यहाँ पर सूत गोस्वामी बता रहे हैं यह धन्य, यानी वास्तव में सफल कौन है, भगवंत इत्थम, यानी जो भगवान पूर्णतया भिज्ञ है इत्थम, ऐसा व्यक्ति जो कि वास्तव में कौन सी जिज्ञासा कर रहा है भगवान के विषय में। यद वासुदेवी खिल लोकनाथ, जो वासुदेव अर्थात भगवान के प्रति अखिल लोकनाथ है, जो कि इस पूरे संसार के स्वामी हैं, उनके विषय में यदि कोई जिज्ञासा करने की चेष्टा करता है, यदि उनके विषय में पूछने की चेष्टा करता है, यदि उनके विषय में जानने की चेष्टा करता है, तो वास्तव में वो धन्य है। क्योंकि भौतिकता के विषय में तो संपूर्ण जीव जानते जानने का प्रयास करते हैं। संसार में एक आज का व्यक्ति नींद से उठता है और सबसे पहले न्यूज़पेपर उठाता है ना, न्यूज़पेपर में क्या लिखा होता है, भौतिक गंदगी। एक न्यूज भी गुड न्यूज नहीं होती है, सिर्फ ये होता है यहाँ पर डकैती हुई, यहाँ पर इतने मारे, वहां पर उतने मारे, वहां पर ये हुआ, वहां पर रेप हुआ, वहां पर ये हुआ, हर चीज मतलब ऐसी ऐसी दिन की शुरुआत होती है ऐसी जिज्ञासा, ये जानकर क्या चल रहा है, व्हाट्स द अपडेट्स, क्या हो रहा है संसार में, और जो कुछ हो रहा है वो सुनकर ना उसका कल्याण हो रहा है और ना ही ना उनका जिन्होंने बताया है। तो वास्तव में कल्याण जिस चीज से नहीं हो रहा है वो चीज जानने की क्या आवश्यकता है, वो चीज जानकर क्या फायदा, जिससे किसी का भी फायदा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं कि जो भगवान के विषय में जानता है, जो भगवान के विषय में जानने की चेष्टा करता है, कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्म भावम। आत्मभावम का मतलब होता है आत्मा में आह्लाद पैदा कर देते हैं। आत्मा जो है वो जन्म जन्मांतर से तड़प रही है इस शरीर के अंदर, लेकिन यदि कोई भगवान के विषय में जानने की जिज्ञासा करता है, भगवान के विषय में जानने की चेष्टा करता है, तो वो आत्मा जो है वो आह्लादित हो जाती है, वो बहुत खुश होती है, आत्मा प्रसन्न हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है न यत्र भूयः परिवर्त उग्रे। उग्रे कहते हैं बहुत भयानक है, ये जो संसार है वो बहुत भयानक है, इसके अंदर हम अपराध ही अपराध देखते हैं, ये अपराधों का दुखों का समुद्र है, कष्टों का समुद्र है, पदम पदम या त्रिपदा, एक एक कदम पर विपता है। अभी सब कुछ सही चल रहा है, समझो अच्छी इनकम जा रही है, बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, सब कुछ सही हो रहा है, रास्ते में क्या एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें से ना एक का टांग टूट गई, एक का क्या हो गया, भगवान ना करे, पता नहीं क्या क्या संसार में ऐसी ऐसी खबरें पढ़ते हैं कि कभी किसी की शादी हो रही है अचानक से हो गया उल्टा सीधा, कभी घर में बैठे बैठे किसी का एक्सीडेंट हो गया, सॉरी किसी का हार्ट फेल हो गया, किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी का क्या हो गया, यानी कि कोई हर समय कोई ना कोई संभावना बनी रहती है कि कुछ न कुछ गलत हो सकता है। खुशियों की इतनी सारी है ना, हम प्लानिंग करते हैं और पता चला कि नहीं हमारे घर में किसी की डेथ हो गई, तो अभी ये सारी प्लानिंग खत्म। तो यानी कि ये कितना उग्र है। और सबसे बड़ी भयानक बात इसमें क्या है कि दूसरों को चलो ठहरे, दूसरों का तो हम दुख देखते रहते हैं हर रोज, लेकिन अपने विषय में भी हम भले जो घर इतनी मेहनत से बनाते हैं, जिसमें हम रहते हैं, जो कि सारी जिंदगी जिन बच्चों को पालते पोसते हैं, उन्हीं से हमें भी दुख मिलते हैं। और कब एक दिन अगर दुख नहीं भी मिलते तो एक दिन ऐसा आता है कि हमें उसी घर से निकाल दिया जाता है और शमशान में जाकर जला दिया जाता है। तो ये कितना भयानक संसार है जिसमें पदम पदम या त्रिपदा सर्वत्र दुखम पश्येत, कि कहीं भी सुख की छांव नहीं है। वास्तव में ये संसार दिया गया है दुख देने के लिए, अपराधी हैं हम, भगवान के आदेश का हमने भगवान का आदेश है, भगवान की इच्छा यहाँ ये है कि जीव जो है वो अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहे, लेकिन हम भगवान परंतु हम स्वयं प्रभुत्व जताने की इच्छा लेकर इस संसार में आ गए तो भुगत रहे हैं, बारंबार जन्म मरण के चक्कर में आ रहे हैं। लेकिन भगवान की इतनी अनुकंपा है, भगवान की इतनी कृपा है कि वो भगवान स्वयं बारंबार आते हैं, ऐसी लीलाएं करते हैं, कभी गुरु को कभी शास्त्र के जरिए हमको ये समझाते हैं कि बेटा ये जो संसार है वो आपके रहने की जगह नहीं है। तो ये यहाँ पर लिखा है ना यत्र भूय परिवत्त उग्रे, तो यदि कोई भगवान के विषय में जिज्ञासा करता है तो उससे कितना आनंद, सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले तो वो धन्य हो जाएगा, वो व्यक्ति जीव धन्य है जो भगवान के विषय में जानने की चेष्टा करता है। यह द्वासुदेवे कुललोकनाथ, ये जो संसार का पूरा संसार है उसके नाथ भगवान श्री कृष्ण, उनके विषय में जो कोई जानता है, जानने की कोशिश करता है या फिर किसी सतगुरु के शरण में जाकर भगवान के विषय में जिज्ञासा करता है, कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्म भावम, तो संसार जो उसकी आत्मा इतना करोड़ों करोड़ जन्मों से फंसी हुई है और उसको कहीं आनंद नहीं आता है, उसको केवल और केवल भगवान, क्योंकि उसका संबंध है कृष्ण के साथ, वो बिछड़ गई है और जब कृष्ण के विषय में बात आती है तो वो आह्लादित हो जाती है। और सबसे बड़ी बात कि उसे ना यत्र भूय, भूय कहते हैं इससे, फिर इस संसार में उसको परिवर्त उग्रे, उसको वापस से पुनरावृत्ति इस भयानक संसार में उसको आना नहीं पड़ता। तो ये कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम वास्तव में हम संसार में जितनी भी जिज्ञासाएं कर लें, भले कोई बड़े से बड़ा इंजीनियर बन जाए, बड़े से बड़ा डॉक्टर बन जाए, कितना कुछ जाना पड़ता होगा, कितनी सारी कॉपियों में कितने सारे क्वेश्चंस लिखे होंगे और कितने सारे आंसर्स को याद करना होगा, लेकिन कोई एक क्वेश्चन या कोई एक आंसर भी ऐसा नहीं है जो आपकी आत्मा को प्रसन्न कर सके या जो बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर से बचा सके। इसीलिए जब सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिले तो कहने लगे कि सब लोग समझते हैं कि मैं कितना बड़ा ज्ञानी हूँ, मुझे बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन मैं अपने विषय में नहीं जानता, मुझे पता ही नहीं है। वो कहते हैं कि आमी केमे आमार चार ताप त्रय, आखिर मैं कौन हूँ, मैं इस संसार में क्यों आया, और ये त्रय ताप आदिदैविक आदिभौतिक और आध्यात्मिक ये मुझे क्यों सता रहे हैं, मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, आखिर ऐसा मैं इस संसार में मुझे मैं अगर भगवान का अंश हूँ तो मुझे भगवान के साथ रहना चाहिए, मुझे क्यों धकेला गया है इस दुखमय संसार में। तो वास्तव में ये होती है वास्तविक जिज्ञासा, बहुत सारी जिज्ञासाएं होती है संसार में, लेकिन वो जिज्ञासा जो आपको बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर से, जिज्ञासा का मतलब होता है, ज्ञान का क्या मतलब होता है, वह चीज जानो जो जानकर तुम्हें कभी भी दुखी न होना पड़े। वास्तव में जो भी चीज हम जानने की कोशिश करते हैं उससे कुछ ना कुछ तो सुख मिलता है हमें, लेकिन उससे वास्तविक जिज्ञासा क्या है कि कभी कोई दुख ना मिले, है ना। छोटी छोटी जिज्ञासाएं भी, भाई मेरी ये प्रॉब्लम हो गई है कैसे सॉल्व हो जाए, तो उसके विषय में आपको बताएंगे तो क्या होगा, वो उपयोग करने के बाद आपकी वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी, लेकिन सारी प्रॉब्लम्स तो सॉल्व नहीं होंगी, कोई ना कोई दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। लेकिन ये जो भगवान के विषय में जानने की चेष्टा करना है, ये जो जिज्ञासा है, उससे क्या होगा, ना यत्र भूय परिवर्त उग्रे, इस भयानक संसार में वापस कभी आना ही नहीं पड़ेगा, और इस संसार में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो समझो केवल और केवल भगवान के ज्ञान को अर्जित करने से समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि वापिस आएंगे नहीं तो फिर प्रॉब्लम भी नहीं होंगी। तो बहुत ही सुंदर अनुवाद है कि इस संसार में केवल ऐसी जिज्ञासाओं द्वारा मनुष्य सफलता तथा पूर्णतः विज्ञ हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ ऐसी जिज्ञासा। अब जो हमें पता है कि जब हमने पहला अध्याय पढ़ा था इस सिकंद का, तो उसमें सौनिक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से चंद जिज्ञासा छह प्रश्न पूछे थे ना, ये प्रश्न थे, और उसमें भगवान के विषय में पूछा था, भगवान के अवतारों के विषय में पूछा था। तो आज सूत गोस्वामी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं फिर से, यानी कि उनको वापस से ये बता रहे हैं कि आपने जो जिज्ञासा की है, आपने जो प्रश्न किए हैं, वो कितने सुंदर प्रश्न हैं, और वास्तविक सफलता संसार में और वास्तविक पूर्णतया ज्ञान यदि किसी कोई है तो भगवान के विषय में जानने से ही है। तो ये क्योंकि ऐसी जिज्ञासाओं से अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान के प्रति दिव्य आह्लादकारी प्रेम उत्पन्न होता है। वास्तव में प्रेम ही हमारी आत्मा का एकमात्र स्वभाव है, और ये प्रेम जो हमारे हृदय में है, जो कि संसार के विभिन्न व्यक्तियों और वस्तुओं में बांटा हुआ है हमने, वो प्रेम भगवान के लिए ही है। और ये भगवान का प्रेम क्योंकि संसार में आकर दूषित हो जाता है, तो संसारिक वासना का स्वरूप धारण कर लेता है, और उस इंद्रिय तृप्ति की शक्ल धारण करने के बाद हम क्या समझते हैं कि शायद यही प्रेम है। वास्तव में प्रेम उसको नहीं कहते हैं, शास्त्र कहता है निज इंद्रिय तृप्ति वाचा तार नाम काम। इस संसार में जिससे भी जो प्रेम करता है तो कहीं ना कहीं उसे इंद्रिय तृप्ति की इच्छा होती है। तो यदि कोई संतान से भी प्रेम करता है तो चाहता है कि संतान बदले में मुझे आदर दे, है ना। कोई पति से प्रेम करता है तो इच्छा होती है पत्नी के कहना पति मेरी सुरक्षा करे, मेरी विश्वास को पूरा करे। और अगर पति पत्नी से प्रेम करता है तो उसके पीछे भी उसकी इच्छा होती, कहीं ना कहीं इच्छा सूक्ष्म रूप में होती ही है। तो जहाँ इच्छा है वहाँ प्रेम नहीं है। तो संसार में यदि भी कोई किसी से प्रेम करता है तो वो कहीं ना कहीं इच्छाओं से भरा होता है, लेकिन आत्मा जो है वास्तविक प्रेम क्या है, कृष्णेर इंद्रिय तृप्ति वांछा तार नाम प्रेम। तो यदि कोई अगर कृष्ण की इंद्रियों की को तृप्त करने की इच्छा करता है तो वो वास्तविक प्रेम है। और जब वो प्रेम किसे प्राप्त होता है, भगवान के विषय में श्रवण करने से। जब हम भगवान के विषय में पूछते हैं, भगवान के विषय में श्रवण करते हैं, तो फिर क्या होता है, दिव्य आह्लादकारी प्रेम, भगवान के साथ हमारा दिव्य आनंदमय प्रेम जो हमारे हृदय को हमारी आत्मा को तृप्त कर देता है वो उत्पन्न होता है, और जन्म मृत्यु की घोर पुनः आवृत्ति से शत प्रतिशत प्रतिरक्षा की गारंटी प्राप्त हो जाती है। यानी कि अब अगर जीव की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो भगवान के लिए उसको प्रेम मिला था वो उसने भौतिक जगत में अलग अलग व्यक्ति और वस्तुओं को दे दिया। अब वो जब भगवान के विषय में सुनता है, भगवान के विषय में जिज्ञासा करता है, और बारंबार जब हम भगवान की कथाओं का भक्ति स्टार्ट होती है श्रवण से, जब प्रहलाद महाराज भक्ति की व्याख्या करते हैं नवदा भक्ति के द्वारा, तो कहते हैं श्रवणम, पहला भक्ति का स्टेप है सुनना। और जब हम भगवान के विषय में पूछते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, और उसके विषय में हमें वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है, यदि कोई शुद्ध भक्त के द्वारा हमें ये बताते हैं, जैसे हमें श्री प्रभुपाद के द्वारा हम सुन रहे हैं, सूत गोस्वामी के द्वारा सुन रहे हैं, इन जो शब्दों को यदि हम सुन रहे हैं, तो क्या होता है, हमारे हृदय का जो प्रेम वो भौतिक वस्तुओं में अटक के रह गया है, वो वापस से भगवान के श्री चरणों की ओर अग्रसर हो जाता है। और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है 100% गारंटी के साथ, आपको ये 100% गारंटी दी जाती है कि वापस आपको इस संसार में वापस नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि ये संसार बहुत भयानक है, तुम्हारे रहने की ये जगह नहीं है। तुम्हें तो कहाँ रहना चाहिए, अपवर्ग में, जहाँ पर कोई दुख नहीं, कोई कलेश नहीं, कोई जहाँ पर कोई कष्ट ना हो, जहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसी जगह पर रहना है। तो वहाँ पर जाने के लिए केवल भगवान के विषय में जब हम सुनते हैं तो फिर हम खुद ब खुद हमारा हृदय जो है वो भगवान के प्रेम से भर जाता है, और जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो फिर संसार की आसक्ति स्वतः दूर हो जाती है, और हमें भगवान के चरणों में शरण मिलती है। श्री प्रभुपाद ने बहुत ही सुंदर बताया है कि केवल भक्त ही भगवान के विषय में जान सकता है, और जो भगवान के विषय में जान जाता है, क्योंकि भगवान संपूर्ण है, और भगवान के विषय में जो जान लेता है तो वो यही जान लेता है कि निराकार ब्रह्म और अंतर्यामी परमात्मा भगवान के ज्ञान में सम्मिलित होते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कोई आप खाली परमात्मा के विषय में ज्ञान हासिल करते हो या ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म निराकार के विषय में जानने की कोशिश करते हो तो जरूरी नहीं आपको भगवान के विषय में पता चले, लेकिन जो भगवान के विषय में जानता है, वदन्ति तत्त्व विदस्तत्वम यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते, तो जो भगवान से प्रेम करते हैं वो भगवान के विषय में जानते हैं कि वही भगवान जो है वो परमात्मा स्वरूप में मेरे हृदय में विराजमान है और वही भगवान ब्रह्म स्वरूप में कण कण में व्याप्त है, संसार में व्याप्त है। तो जो भगवान के विषय में जान लेता है उसे सब कुछ पता चल जाता है, उनकी भगवान की शक्तियों भगवान के अंशों के विषय में सब कुछ जान लेता है। अतः भक्तों को परम भाग्यशाली कहा जाता है, इसीलिए क्योंकि भगवान के भक्त होते हैं वही सफल हैं, उनको भगवान का कंप्लीट ज्ञान पता होता है। और भगवान का शत प्रतिशत भक्त जन्म मरण के भयानक चक्कर से भौतिक तापों के प्रति निश्चेष्ट रहता है, क्योंकि ये भगवान के भक्त को ये गारंटी है उनके लिए 100% गारंटी लिखी है श्रील प्रभुपाद ने कि जो भगवान का शत प्रतिशत भक्त है। अब इसका मतलब क्या है कि भगवान के अतिरिक्त, भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त उसके जीवन का और कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं भगवान का दास हूँ, मुझे भगवान को प्रसन्न करना है, इसके अतिरिक्त मेरे जीवन का और कोई लक्ष्य नहीं है और कुछ भी मुझे करना नहीं है, बस मेरे जीवन का एक ही जीवेरे स्वरूप हुए कृष्ण नित्य दास, मैं कृष्ण का दास हूँ। और उस भक्ति के बाद उसको उस कोई सकाम कर्म की इच्छा नहीं है, कोई ना फल की इच्छा नहीं है, केवल इसलिए कि ज्ञान कर्मा देना अनुकूल है कृष्णानु, कि केवल कृष्ण को प्रसन्न करना है, इसके लिए मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ। और ऐसा ही अगला श्लोक में भी सुख गोस्वामी बताते हैं, वो हम कल पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।